الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. في هذه الكلاس من سورة يوسف في تفسير قرآن معرفة القرآن جلد نمبر 5 سے اور آيات نمبر 7 سے لے کر کے 20 کے معارف و مسائل پڑھ رہے تھے. پیج نمبر 30 کے اوپر ہیں اور آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین کو چھوڑ کر کے باقی جو 10 بھائی تھے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف پلاٹنگ کری تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے جو والد صاحب ہیں تو وہ ہماری طرف التفات نہیں کرتے, حالانکہ ہم 10 ہیں اور ان سے بڑے ہیں. تو یوسف تو بہت ہی چھوٹے سے ہیں, بنیامین جو ہے ان سے بھی زیادہ چھوٹا سا ہے, تو وہ تو گھر کے کام کاج سنبھالنے کی قوت بھی نہیں رکھتے. ہم سنبھالتے ہیں گھر کے کام کاج. ٹھیک ہے, تو ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی بڑوں کو ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش, بڑوں کو ڈکٹیٹ کرانا. ٹھیک ہے, تو بھائی بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو گائیڈ کرتے ہیں, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. چھوٹے جو ہے وہ بڑوں کو گائیڈ کرنا شروع ہو جائیں یا کوشش کریں کہ جی بڑے ہماری بات مان کر کے چلا کریں, تو یہ تو ترتیب کو الٹ دینا ہے نا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہی ترتیب الٹنے کی کوشش کری. تو آگے فرماتے ہیں حضرت موسیٰ شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ اس آیت میں ان بھائیوں نے اپنے متعلق لفظ عصبہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, ونحنو عصبہ, تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ عربی زبان میں 5 سے لے کر 10 تک کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے. اور اپنے والد کے بارے میں جو یہ کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین, کہ بے شک ہمارے ابا حضور جو ہیں وہ تو صریح گمراہی کے اندر ہیں, کھلی گمراہی میں ہیں. تو اس میں لفظ ضلال کے لغوی معنی گمراہی کے, لغوی معنی لفظی معنی گمراہی کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو راہ اختیار کرنی چاہیے تھی اس راہ کو چھوڑ دیا یا اس راہ کو گم کر دیا, لوز کر دیا اور کوئی اور راہ اختیار کر لی. ٹھیک ہے, تو اس کو گمراہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ مگر یہاں گمراہی سے مراد دینی گمراہی نہیں. ٹھیک ہے, ورنہ ایسا خیال کرنے سے یہ سب کے سب کافر ہو جاتے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں, ان کی شان میں ایسا خیال قطعی کفر ہے. نبی کی شان میں ایسا خیال کہ نعوذ باللہ وہ عقیدے کی گمراہی, دینی گمراہی سے یہاں پر مراد کیا عقیدے کی گمراہی. ٹھیک ہے, اور جو عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں شریعت میں, تو وہ عبادات یعنی غلط. ٹھیک ہے, نماز جو ہے وہ ایسے نہیں ہونی چاہیے بلکہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. رضا زکوٰۃ کا جو نصاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ اتنا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دنیا میں غربت زیادہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اس کا خیال کرنا چاہیے تھا, اور زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 5% بتانا چاہیے تھا 2.5% کی بجائے. ٹھیک ہے, تو عقیدے کی گمراہی ہو یا عمل کی گمراہی ہو, اگر نبی کی طرف ان میں سے کسی چیز کی طرح کسی چیز کا انتساب کریں گے تو کرنے والا جو ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ انہوں نے کون سے والے پھر گمراہی کی بات کری, तो हजरत फिर फरमा रहे हैं, और इसकी मजीद दलीलें आगे भी आएंगी कि ये जो है ना वो दुनियावी मामलात, दुनियावी मामलात से मुराद के बस जो जजमेंट होती है किसी मामले के अंदर, के जिसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं वैसे करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है ना नबी के ऊपर हर चीज के लिए वही नहीं आ रही होती, हर चीज के लिए वही नहीं आ रही होती कि भाई इतने पौधे लगाने हैं कि इतने पौधे नहीं लगाने, है ना। तो इसमें जो है वो अगर नबी की गलती का कोई यानी ऐलान कर दे तो ये उसको कुफर में दाखिल नहीं करे। हाँ, ये नबी के ऊपर एतमाद की कमी कहलाएगी और ये जो है वो गुनाह गुनाह की हद तक भी जा सकता है, लेकिन कुफर की हद तक बंदे को नहीं लेके जाएगा। तो वही हजरत कह रहे हैं कि ऐसा ख्याल करने से ये सब के सब काफिर हो जाते हैं अगर दीनी गुमराही कहते, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुजीदा नबी हैं, ठीक है। अब जो जहाँ तक उस्बा का मामला है, तो उस्बा का जो लफ्ज है अरबी जुबान के अंदर 5 से लेकर 10 की जमात के लिए बोला जाता है, और ये तो 10 ही थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के मुताबिक खुद कुरान करीम में मजकूर है कि बाद में उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ करके वालिद से दुआए मगफरत की दरख्वास्त की, जिसको उनके वालिद ने कबूल भी कर लिया, जिससे जाहिर ये है कि इन सब की खता मुआफ हुई। ये सब इसी सूरत में हो सकता है कि ये सब मुसलमान हों, वरना काफिर के हक में दुआए मगफरत जायज नहीं है, ठीक है। काफिर जो कुफर कर रहा होता है ये भी एक गुनाह ही होता है, लेकिन वो शिर्क वाला गुनाह होता है, ठीक है, या नबी के इनकार वाला गुनाह होता है। वो जब तक वो उससे तौबा नहीं करेगा ना, तो उस वक्त तक जो है वो उसके हक में दुआए मगफरत नहीं की जा सकती कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुनाह किए हैं इन्होंने, ये कुफर और शिर्क वाला गुनाह तो नहीं था, ये जो था वो भाई को कत्ल करने का मंसूबा बनाना, भाई से जो है वो हसद करना, भाई को जो है वो तकलीफ पहुंचाना, ये वाले गुनाह थे ना। तो इन गुनाहों की मगफरत की दुआ जो है वो जायज थी, क्योंकि ये मुसलमान थे, ठीक है। काफिर के कोई 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 क्रिश्चियन आपसे आकर कहे, या कोई ज्यू या कोई हिंदू, कि भाई मैंने जो है ना वो कल शराब पी थी, तो मेरे लिए जो है वो दुआ करो कि अल्लाह ताला जो है ना वो मेरे शराब पीने के गुनाह को माफ कर दे, उसके लिए ये दुआ नहीं की जा सकती कि अल्लाह इसके शराब के गुनाह को माफ कर दे, या अल्लाह जो है ना वो इसके जिना के गुनाह को माफ कर दे, नहीं, उसकी तो माफी है ही नहीं, क्योंकि वो ईमान वाला नहीं है, नबी पर ईमान नहीं लाया, ठीक है। उसके लिए क्या दुआ कर सकते हैं, ए अल्लाह इसको ईमान की तौफीक अता फरमा दे। काफिर के लिए बस ये दुआ है कि अल्लाह इसको ईमान की तौफीक अता फरमा दे, ठीक है। ये जरूर दुआ करें भाई, सारी दुनिया के काफिर के लिए दुआ करें, काफिरों के लिए, अपने किसी पड़ोसी काफिर है या कोई कॉलीग काफिर है उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसको ईमान की हिदायत अता फरमा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि वो जो फलाना काम कर रहा है अल्लाह उसको माफ फरमा दीजिए उस वाले पर काम के अंदर, ठीक है। तो ये फरमा रहे हैं कि काफिर के हक में दुआए मगफरत जायज नहीं है। इसीलिए इन भाइयों के अंबिया होने में तो उलमा का इख्तलाफ है, मगर मुसलमान होने में किसी का इख्तलाफ नहीं, ठीक है। इससे मालूम हुआ कि लफ्ज़ वलाल इस जगह सिर्फ इस मानी में बोला गया है कि भाइयों के हुकूक में बराबरी नहीं करते, ठीक है, कि भाई हमारे जो बाप है ना वो हुकूक के अंदर, हमारे भाइयों के जो हुकूक हैं उनके अंदर बराबरी नहीं करते, ठीक है। अकीदे की गुमराही या जो जो अमाल जो शरीयत का हिस्सा होते हैं उनके बारे में ये गुमराही नहीं, उनकी मुराद थी। तीसरी आयत में ये बयान है। अच्छा, यहाँ पर एक और नुकता ये है कि इन्होंने जो है ना वो खता करी, और हत्ता के यहाँ तक कहा जो अगले पैराग्राफ के अंदर है कि अभी हम गुनाह कर लेते हैं और बाद में जो है वो साले बन जाएंगे, नेक बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने जिल्लत उठाई, मुसीबतें उठाई, और बिलाखिर जो है ना वो इनको शर्मिंदगी हुई और इन्होंने जो है वो अपने गुनाह से तौबा कर ली, ठीक है। यानी इन्होंने जो है वो यानी नदामत हो गई इनको, इन्होंने बाकायदा एडमिट भी कर लिया अपने भाई के सामने भी और अपने बाप के सामने भी, और जो है वो दुआएं मगफरत की भी जो है वो तमन्ना कर दी, और इनकी खता माफ भी हो गई, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद जो इनकी औलादें हुई बनी इसराइल, तो उन बनी इसराइल के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पैगंबर तो आए, तो वो पैगंबर कहाँ से आए, सारे के सारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे, ये तो कहीं लिखा हुआ हमने ना कभी सुना और ना कभी पढ़ा कि जितने पैगंबर आए आए बनी इसराइल के, वो सारे के सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, ठीक है। वो बनी इसराइल इन्हीं इन्हीं लोगों की औलादों में से थे, तो पैगंबर भी आए इनकी औलादों में, ठीक है। लेकिन जो मास जो कौम थी बनी इसराइल की, तो उसमें फिर जो बुराइयां आईं, और बहुत ही ज्यादा ऐसी बुराइयां आईं कि वो जो है वो अंबिया के दुश्मन रहे, है ना, हत्ता के कहलाए कि उन्होंने अंबिया की जो है वो कत्ल किया, और ऐसा ऐसा किया, और ऐसा ऐसा कहता कि सूरह फातिहा, जिसके अंदर हम कुरान मजीद जिससे हम शुरू करते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कैसे किया है, गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है ना। मग़ज़ूब का लफ्ज जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, सूरह फातिहा की तफसीर पक्की है कि मग़ज़ूब इन्हीं बनी इसराइल के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तक के थे, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वाले जो थे ना उनके लिए मग़ज़ूब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, यानी जिन्होंने जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया, ठीक है, जो भी माना जैसे भी माना, नसारा बने, क्रिश्चियंस बने, तो उनके लिए ज़ालीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मग़ज़ूब का लफ्ज है वो यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्लाह का गजब हुआ, तो ये पूरी की पूरी कौम के ऊपर, ठीक है, इन्होंने अपने ही दरमियान के अंबिया के साथ जो बुरा भला किया। तो अब क्या ये इनके जो बाप थे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, तो क्या उनके गुनाह की वजह से ऐसा हुआ कि उनकी औलाद जो है वो मेजॉरिटी इस तरीके से मग़ज़ूब बन गई? क्या माँ बाप के गुनाहों का असर उनके ऊपर हुआ, या ये कि माँ बाप को जो है वो माफ कर दिया गया, अब जो है ना उनका कोई ताल्लुक नहीं है उनके औलाद के गुनाहों के साथ? अल्लाह आलम, हमें नहीं पता ये बात, ठीक है। लेकिन चूंकि ये कुरान मजीद जो है ये हमारे लिए किताब हिदायत है, और ये हमारा काम है कि हम इसके अंदर से अपने लिए इबरत तलाश करें, अपने लिए हिदायात तलाश करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान मजीद के अंदर जो वाकयात बयान करते हैं ये खालिसतन हमारी हिदायत के लिए और हमारी इबरत के लिए बयान करते हैं, किस्से गोई के लिए बयान नहीं करते। तो जब इतना मेजर वाकया कुरान मजीद के अंदर ये बयान किया है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का, ठीक है, तो उनकी जो गलतियां थी तो उनसे हमें इबरत पकड़नी है ना, तो वो इबरत क्या सिर्फ इतनी है कि बस उनको जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़ गई, ठीक है, या ये कि इबरत जो है वो इतनी भी कि भाई बेशक उन्होंने जो डिलेड तौबा करी तो डिलेड तौबा बिलाखर कबूल तो हो गई और उनकी गुनाहों को माफ कर दिया गया, लेकिन क्या इसका असर जो है वो उनकी औलादों के ऊपर भी आया, ठीक है। कम अज कम हमें अपने लिए जो है वो इसको ऐसी सोचना चाहिए कि देखें अगर हमने भी खुदा ना खास्ता उनकी रविश इख्तियार करी ना, मग़ज़ूब के रास्ते पे चल पड़े, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगते हैं, ठीक है, कि ये जो सिरात मुस्तकीम है ना ये कहीं बनी इसराइल वाला रास्ता ना हो कि हम वो वाला रास्ता इख्तियार कर लें, बल्कि हम सिरात मुस्तकीम इख्तियार करें, ठीक है। तो भाई इनका रास्ता क्या था कि इन्होंने जो है वो वही सारे काम किए थे कि अपनी रूहानी बीमारी का इन्होंने इलाज नहीं करवाया, हालांकि वक्त नबी अलैहिस्सलाम वहां पे मौजूद थे, इन्होंने इनकी नाकदरी करी, उनके सामने जा करके अपने अहवाल बयान नहीं करे, अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया, इनके गुनाह इनकी जो है वो मसले बढ़ते चले गए, शैतान ने इनको एक्सप्लॉइट किया, और हत्ता कि जो है वो इनसे वक्त के नबी की मुखालफत और आइंदा आने वाले नबी की मुखालफत, बल्कि उसके साथ जो है वो कत्ल का मंसूबा और क्या क्या कुछ नहीं किया इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। तो ये जो डिलेड या जो इंटेंशन है ना कि जी अभी नहीं बाद में जाकर के मैं नेक बन जाऊंगा, इससे सबसे पहला इसके ऊपर तो सवाल ये उठता है कि क्या मेरी जिंदगी भी रहेगी कि मैं जो हूँ वो बाद में नेक बनूं, क्या मौका रहेगा मेरे पास, जिंदगी का तो कुछ पता नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर मौका रहा भी और मैंने बाद में जाकर के तौबा कर भी ली, फिर भी जो आपने अपनी जिंदगी गंवा दी है ना गुनाहों के अंदर, इसका असर जो है ना वो इंतहाई खतरनाक रह सकता है, और ये असर जो है ना फिर अपनी जिंदगी के अंदर भी बाकी रहेगा कि जिल्लत और रुसवाई भी उठानी पड़ेगी, और अगली नस्लों की जिंदगी में भी ये असर आ सकता है। तो हमें जो है ना वो ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि जी बाद में तौबा करूंगा। तो फरमाते हैं कि तीसरी आयत में ये बयान है कि भाइयों में मशवरा हुआ, बाज ने ये राय दी कि यूसुफ को कत्ल कर डालो, बाज ने कहा कि किसी गैर आबाद कुएं की गहराई में डाल दो ताकि ये कांटा दरमियान से निकल जाए और तुम्हारे बाप की पूरी तवज्जो तुम्हारी ही तरफ हो जाए, रहा ये गुना जो उसके कत्ल या कुएं में डालने से होगा, सो बाद में तौबा करके तुम नेक हो सकते हो। ठीक है, आयत के जुमले वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन के ये मानी भी बयान किए गए हैं कि बाद में तुम तौबा करके नहीं भी बन सकते हो, और ये मानी भी हो सकते हैं कि यूसुफ के कत्ल के बाद तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि बाप की तवज्जो का ये मरकज खत्म हो जाएगा, या कि कत्ल के बाद बाप से उजर माजरत करके तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, यानी तुम्हारा मामला सब सेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो मसला है, वो वजह मसला जो है वो दरमियान से तुमने हटा दी। ठीक है, तो अब वह तो बड़ी कॉमन सेंस की बात कि यानी ऐसे तो आप अपने हालात को दुरुस्त नहीं कर सकते गुनाह के रास्ते से। ठीक है, लेकिन शैतान इंसान को कैसा बेवकूफ बना देता है, और कैसा जो है ना वो उसको यानी अल्लाह के वादों से कैसी उसकी निगाह को हटा देता है कि वो समझता है कि जी मेरे हालात जो है ना वो मैंने खुद ही संवार ले, मेरे हालात मैंने खुद ही संवार ले, अल्लाह ने नहीं संवार ले। ठीक है भाई, हालात तो अल्लाह ने संवार है ना, आप खुद तो नहीं अपनी मेहनत से हालात को संवार सकते। जब आप खुद अपनी मेहनत के ऊपर मुतवज्जो हो जाते हैं, अपने अमल के ऊपर मुतवज्जो हो जाते हैं, और अल्लाह से निगाह हट जाती है, तो फिर शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है कि अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करवाए आपसे हालात दुरुस्त करने की कोशिश में। ठीक है, इन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि हालात दुरुस्त करना चाहते थे, अब्बा अब्बा हुजूर जो कि वक्त के नबी थे उनकी आंखों का तारा बनना चाहते थे। बुरी ख्वाहिश तो नहीं है ये, बुरी ख्वाहिश तो नहीं है ना, ये तो बड़ी यानी एक बड़ी इनोसेंट किस्म की और बड़ा जो है वो सादा और अच्छी ख्वाहिश है कि भाई मैं अपने अम्मी अब्बू का जो है वो आंखों का तारा बन जाऊं, या अब्बू का जो है वो पसंदीदा बेटा बन जाऊं। ठीक है, नीयत अच्छी थी, नीयत खराब नहीं थी, नीयत अच्छी थी, लेकिन रास्ता क्या इख्तियार किया, अल्लाह की नाफरमानी, हुक्मों की नाफरमानी वाला रास्ता। ठीक है ना, अल्लाह से दुआ कर लेते, अल्लाह के नबी के पास जाकर के पूछ लेते, तो कोई रास्ता निकल आता भाई। ठीक है, और मसला सॉल्व हो जाता, अल्लाह ताला सारे मसले सॉल्व कर सकते हैं, और नबी जो है वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मदद से आपको रास्ता बता सकते हैं कि जिससे जो है वो आप अल्लाह ताला की मदद को शामिल हाल करके आपके मसले हल हो जाएं। ठीक है, लेकिन अकल परस्ती, अपनी अकल को जो है वो समझा के जी मैंने अपनी अकल से अपने हालात को दुरुस्त करने हैं, तो फिर देखें शैतान ने जो है वो यानी मौका मिल गया उसको, और उसने कैसे इन लोगों का रास्ता खराब किया। यही मामला आज हमारा भी है कि हम जो है ना वो झूठ बोल करके, हम झूठ क्यों बोलते हैं, यही ना कि भी हमारे हालात दुरुस्त हो जाए, हमारा मसला सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, हम कहीं पे फंसे हैं या पोटेंशियली कहीं पे जाके फंस सकते हैं, तो हम जो है वो झूठ बोलते हैं, और हम क्यों बोलते हैं, ताकि मसला सॉल्व हो जाए। हालांकि हमारे झूठ बोलने से मसला सॉल्व नहीं होगा, मसला तो अल्लाह ताला ने सॉल्व करना है। तो भाई बजाय इसके कि हम अल्लाह को राजी करें, हम व्हाई डू वी टेक थिंग्स इन आवर ओन हैंड्स, हम अपने हाथों में तो मामला को ना लेना। ठीक है ना, ये भी होता है इसका मफहूम कि आप अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं करते, आप अल्लाह को इस काबिल नहीं समझते कि अल्लाह ताला आपका मसला हल कर सकता है, आप अपनी अकल को इस काबिल समझते हैं कि मैं अपनी अकल से जो है ना वो मसले को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंसान जो है वो झूठ भी इसी वजह से बोलता है। इंसान जो है वो जैसे रिश्वत लेना, पुरानी बीमारी, अब तो कोई बात भी नहीं करता इसके ऊपर में, रिश्वत दे करके जो है वो घर घर वालों का पेट पालना। ठीक है, तो भाई राशि वल मुर्तशी के लाहुमा फिर ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जी दोनों जो है ना, लेने वाला और देने वाला जो है वो दोनों के दोनों जहन्नुम के अंदर जाएंगे। तो अल्लाह के नबी की बात के ऊपर हमें एतमाद नहीं, उसको हम अहम नहीं समझते, और हम समझते हैं कि जी मैंने अपने घर वालों का पेट खुद पालना है, अपनी मेहनतों से पालना है, तो उसके लिए जो है वो धोखा भी देंगे और रिश्वत भी लेंगे, और जो है वो किसी को कत्ल भी करना पड़ जाए तो वो भी कत्ल भी कर लेंगे। ठीक है, तो बुनियाद जो है ना, जो असल इस मसले का वजह होती है, वो ये होती है कि अपनी अकल और अपनी मेहनत के ऊपर फोकस है, अल्लाह ताला के ऊपर फोकस नहीं है, और अल्लाह ताला के वादों को जो है ना वो बिल्कुल यानी काबिल नहीं समझते। ठीक है, कि वो कि उनके मुताबिक हम चलें और अल्लाह ताला हमारे मसलों को सॉल्व कर देंगे। वही सूद का भी मसला यही है, सारा का सारा पूरी दुनिया में मुसलमानों का, चाहे वो मुल्की सतह पर हो, चाहे वो इंफरादी सतह पर हो, चाहे खानदानी सतह पर हो, क्या क्या घरों के अंदर पर्दा क्यों नहीं करने देते? माँ बाप जो होते हैं वो अपनी औलाद को पर्दा नहीं करने देते, क्यों? इसलिए कि माँ बाप की एक बड़ी नेक ख्वाहिश होती है, बड़ी सादा सीधी सादी अच्छी बड़ी प्यारी ख्वाहिश होती है कि उनकी औलादें जो है वो मिलजुल करके रहें और उनकी औलादों के दरमियान जो है वो प्यार मोहब्बत का मामला रहे, ठीक है ना? तो अगर जो है ना वो औलाद के बच्चे जो हैं या औलाद की बीवी अगर वो जो है ना वो पर्दा करना शुरू हो जाएगी ना दूसरे हमारे औलाद से, तो फिर जो है ना वो दूरियां पैदा हो जाएंगी, राइट? फिर जो है ना वो घर टूट जाएगा, खानदान टूट जाएगा, ठीक है ना? तो इस वजह से बच्चों को आपस में पर्दा नहीं करने देते। तो ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है, नेक ख्वाहिश है, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह का हुक्म तोड़ करके समझते हैं कि हमारी इस तदबीर से हमारे बच्चे जो है ना वो प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, ठीक है? तो आप फिर किस किस्म के दीनदार हैं? क्या आपने जो है वो आलिम कोर्स पढ़ा, आलिमा कोर्स पढ़ा, किताबें पढ़ी हैं, या आपने फजाइल अमाल पढ़े, या आपने जो है वो फलानी चीज जो है वो बड़ा दीन 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 का आपने जो है वो दुनिया में शोर शोर मचाया? अल्लाह के हुक्म को जो है वो आप इस काबिल नहीं समझते कि अल्लाह का हुक्म जो है वो आपके घराने के अंदर प्यार मोहब्बत पैदा होने का सबब बनेगा, आपके अपनी तदबीर प्यार मोहब्बत पैदा होने का सबब नहीं बन सकी? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हम इस बात को, बिल्कुल हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं और अपनी अकल और अपनी तदबीर को जो है वो पहला पहली प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, राइट? तो कैसा दीन, कौन सा दीन? अगर अल्लाह के हुक्म को आप इस काबिल ही नहीं समझते तो आप कौन से वाले दीन की 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 प्रचार करते फिर रहे हैं सारी दुनिया के अंदर, ठीक है? लेकिन हम करते हैं। आज आप देख लें किसी घराने में, चाहे वो दीनदार घराना हो, दुनियादार को तो आप भूल जाए, कैसा दीनदार घराना हो, तबलीगी जमात का घराना हो, उलमा का घराना हो, मदारिस के उलमा, उनके घरों के अंदर पर्दा आपको शाज़ो नादर मिलेगा, शाज़ो नादर जो है वो किसी आलम या दीन के घर के अंदर आपको पर्दा मिलेगा, ठीक है ना? और वो इसी चक्कर में प्यार मोहब्बत कम हो जाएगा, खानदान टूट जाएगा, बच्चे दूर हो जाएंगे। अच्छा, वही माँ बाप जो हैं वो उन्हीं बच्चों को नौकरी की खातिर समंदर पार भेज देंगे, नौकरी, अच्छा अच्छा करियर इसका अमेरिका में बन रहा है तो बच्चा अमेरिका चला जाए, अच्छा करियर इसका ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाए। उस वक्त उनको याद नहीं आता कि औलादे जो है ना वो मिलजुल करके एक जगह पर रहें, उस वक्त याद नहीं आता इनको ये, राइट? याद कब आता है मिलजुल करके रहना? जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करनी, वहां पे इनको याद आता है, ठीक है ना? बाकी सारे कामों के लिए कोई दुनिया के इस कोने में, कोई दुनिया के उस कोने के अंदर, नो वन केयर्स। तो क्या है ये फिर, राइट? ये क्या है, जवाब देना कोई। माशाल्लाह कितने हैं, 39 लोग तो मौजूद हैं, कुछ बताएं, मुझे भी बताएं, मुझे बेवकूफ इंसानों को कुछ बात समझ में नहीं आती, आप समझा दें भाई। आप लोग तो माशाल्लाह सब बड़े कामयाब चीते चीतियां भी होंगी शायद कुछ इसके अंदर, तो बता दें भाई उस फकीर बेतदबीर को ये तदबीरें समझ में नहीं आती दुनिया वालों की, या बल्कि दीन वालों की, सॉरी दुनिया वालों की नहीं, दीन वालों की, बताएं भाई क्या है इस, यानी इस गुत्थी को सुलझा देते हैं कम से कम, कोई है इसका सुलझाव, है कोई इसका? बहरहाल तो वतकून मिन बादिही कौमन सालीन, इन लोगों के अंदर एक अच्छी बात ये थी कि अपने गुनाह को गुनाह समझ रहे थे, कह रहे थे कि हम गुनाह कर रहे हैं बाद में नेक बन जाएंगे, और हमारा क्या हाल हुआ है, हम गुनाह करते हैं और हम उसको गुनाह मानते भी नहीं है, ये भी नहीं कहते बाद में तौबा कर लेंगे, हम तो कहते हैं हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, हम तो जो है वो खैर ख्वाही कर रहे हैं, हम तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम तो इस्लाह की बात कर रहे हैं, तो हमारा हाल तो उनसे भी ज्यादा गया गुजरा हो गया ना इस लिहाज से अगर देखा जाए तो, राइट? कि नहीं, चले भाई आगे फरमाते हैं कि और ये मानी भी हो सकते हैं कि यूसुफ के कत्ल के बाद हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। बहरहाल तो कहते हैं कि ये दलील है इस बात की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अंबिया नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इस वाकये में बहुत से कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब किया, एक बेगुनाह के कत्ल का इरादा, बाप की नाफरमानी और ईजा रसानी, ठीक है, ये सब कबीरा गुनाह है, बेगुनाह के कत्ल का इरादा, बाप की नाफरमानी, किस चीज के अंदर नाफरमानी? हम जो है ना सारे हराम काम के अंदर बाप की फरमाबरदारी के लिए फौरन तैयार होते हैं, दीन के खिलाफ बाप कोई हुक्म दे फौरन तैयार हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है? दीन के लिए कोई बाप हुक्म दे उसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। माँ हुक्म दे दीन के लिए, दीन का हुक्म माँ वो नहीं, बच्चे को वो बात नहीं माननी। लेकिन जो दीन के खिलाफ हुक्म माँ दे रही है या बाप दे रहा है, वो सारी की सारी बात जो है वो बच्चे ने माननी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर तो याकूब अलैहिस्सलाम थे ना, तो यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की नाफरमानी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना ये आजकल के जो मुलूक है ना, मुलूक आजकल दुनिया में बादशाह नहीं होते ना, आजकल माँ बाप बादशाह हैं, ठीक है? माँ बाप बादशाह हैं और उन्हीं का दीन चलता है, उन्हीं का सिक्का चलता है, ठीक है? नाफरमानी में, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर, और ईजा रसानी, ठीक है? तकलीफ पहुंचाना बाप यानी याकूब अलैहिस्सलाम को, ईजा रसानी, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना, फिर छोटी साजिश वगैरह। अंबिया अलैहिस्सलाम से कबल नबूवत भी जमहूर के अकीदे के मुताबिक ऐसे गुनाह सरजद नहीं हो सकते, ठीक है? नबूवत तो 40 साल में जाकर के मिलती थी, इससे पहले ऐसे छोटे गुनाह भी सरजद नहीं हो सकते, बड़े गुनाह भी सरजद नहीं हो, सवाल ही पैदा नहीं होता अंबिया कराम से, ठीक है? तो इस वजह से ये जो लोग थे ना, ये अंबिया नहीं थे, ठीक है? अब अगर किसी किताब के अंदर इनको नबी लिखा हुआ मिल भी गया, जैसे कि हमने शायद पढ़ा था, मुझे मिल नहीं रहा था कि शायद जो है वो क्या कहते हैं इमाम इब्ने जरीर कुतुबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर शायद इनको नबी लिखा गया, कि अगर किसी को रेफरेंस मिल जाए कि कहाँ हमने पढ़ा था, मैं अभी निगाहों में नहीं आ रहा। तो अगर किसी किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ भी है ना, ठीक है, तो उससे क्या बात साबित होती है? चले आप बता दें, आपसे क्विज करते हैं कि अगर आपको जो है इब्ने जरीर कुतुबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि ये जो भाई थे ना ये नबी थे, ठीक है, तो क्या जवाब देंगे आप इसका, क्या एक्सप्लेनेशन होगी? ये हम आपसे पूछते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन होगी इस बात की? जी कोई बताएगा? आपकी तवज्जो का भी सॉर्ट ऑफ इम्तिहान समझने से, इसराइल इसराइल इसराइलियात की रिवायत, अच्छी तावील, तहरीफ शुदा है, ठीक है ना? इसराइलियात, इसराइलियात जो होती हैं तो वो गलत, अगर वो उसूल दीन के खिलाफ हों तो इसका मतलब है कि वो गलत रिवायत है, उन्होंने गलत रिवायत ले ली। लेकिन इब्ने जरीर कुतबी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम दीन हैं, ठीक है ना, कि उनसे इतनी मेजर किस्म की गलती जो है ना वो मुतवक्का नहीं है, इतनी मेजर गलती, ठीक है? तो क्या ऐन मुमकिन है कि ये तहरीफ शुदा है, यानी उसकी कॉपी जो है ना, वो जब आगे कॉपियां बनाई जा रही थी तो लिखने वाले ने जो है ना उस इबारत को चेंज करके लिखा है, ठीक है? इबारत को चेंज करके लिखा है, ठीक है? अच्छा, अब अगला सवाल ये होता है कि भाई क्यों कोई ऐसी तब्दीली क्यों करेगा कि नबियों को जो है ना वो क्या कहते हैं, यानी जो जो गैर नबी हैं और इतने सारे दलाइल मौजूद हैं उनके नबी ना होने पर, तो वो उनको नबी बनाकर ही क्यों क्यों किताब के अंदर नकल करेगा, गलत नकल क्यों करेगा? इब्ने जरीर खुतबी की बात नहीं हो रही, उन्होंने तो वो तो इतनी मेजर ब्लंडर नहीं कर सकते। तो फिर किसी कॉपियर ने, नाकिल ने ऐसी क्यों तहरीफ करी उसके अंदर, इसकी वजह कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल सही फरमाया, अंबिया की मासूमियत पर बोलने का मौका मिल जाए शयातीन को, ठीक है? ताकि इस्मत अंबिया जो होते हैं ना, कि अंबिया मासूम होते हैं गुनाहों से, उसको मशकूक बना दिया जाए, ठीक है? देखो इतने बड़े आलिम दीन ने जो है ना वो ऐसे, यानी जो लिखा है तो वो गलत को थोड़ी लिखा होगा, तो देखो अंबिया भी ऐसे ऐसे गुनाह कर सकते हैं। जब अंबिया की इस्मत पर शक आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आज के दौर में इसका क्या इफेक्ट होगा, ये बताएं जी। अकायद को खराब किया जाए, ठीक है, अकायद यानी अंबिया को जो है वो आपने गैर मासूम कर दिया, ये आपका अकीदा खराब हो गया। एक और बहुत मेजर जो कि इस वक्त इस जमाने का मसला है, ठीक है, अंबिया की असमत को अगर मशकूक बना दिया तो इसका इफेक्ट क्या बनेगा? के अंबिया के बाद अगला दर्जा किसका होता है? ठीक है, अंबिया के बाद अगला दर्जा किसका होता है? उलमा का होता है? नहीं, चलिए उलमा का भी जवाब भी सही है। सहाबा का दर्जा, जो कि उम्मत के सबसे पहले उलमा थे, ठीक है ना, जब अंबिया से इतने बड़े बड़े गुनाह हो सकते हैं तो सहाबा से क्यों नहीं हो सकते? राइट, सहाबा जो है वो कैसे मासूम हो सकते हैं या वो कैसे महफूज हो सकते हैं? उनको मासूम तो वैसे भी नहीं कहते, महफूज कहते हैं ना, है ना, अल्लाह ताला उनसे राजी, वो अल्लाह ताला से राजी, ठीक है ना। तो भाई वो क्यों नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े गुनाह जब अंबिया कर सकते हैं? और जब सहाबा को आपने मशकूक बना दिया तो इस वक्त का जो फितना है वो क्या है? सहाबा को करो साइड पे और अपना दीन अपनी अकल के मुताबिक चलाओ। सहाबा के दीन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। सहाबा ने जो है वो कैसे है, सहाबा के जमाने में जो है वो औरतें मस्जिद जाके नमाज पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसको देखने की। सहाबा के जमाने में जो है वो पर्दा होता था कि नहीं होता था? नो, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। सहाबा ने जो है वो कैसे दीन को समझा, कैसे नमाजें पढ़ी, कैसे जो है वो उन्होंने जिहाद किया या कैसे उन्होंने सब कुछ किया, कोई जरूरत नहीं है। अपनी अपनी अकल से दीन को समझो और अपने मुताबिक जो है वो दीन को लेकर के चलो। सहाबा को लाइन से हटा देना, रास्ते से हटा देना, इस वक्त जो दुश्मनान इस्लाम है ना उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी। और अंबिया की असमत को मशकूक बना देना इसके रास्ते का एक, सिर्फ इसके रास्ते का एक समझने एक स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है, ठीक है। तो समझे इन बातों को, सही है, आगे चलें कि ये दलील है इस बात की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अंबिया नहीं थे। आगे फरमाते हैं कि चौथी आयत में है कि इन्हीं भाइयों में से एक ने ये सारी गुफ्तगू सुनकर कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो कुएं की गहराई में ऐसी जगह डाल दो जहां ये जिंदा रहे और राह रवे मुसाफिर राह रोम राह रो मुसाफिर जब इस कुएं पर आए तो वो उसको उठाकर ले जाए, इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और इसको लेकर तुम्हें खुद किसी दूर मकाम पर जाना भी ना पड़ेगा, कोई काफला आएगा वो खुद उसको अपने साथ किसी दूर मकाम पर पहुंचा देगा। ठीक है, कैसी प्लानिंग कर रहे हैं ये सारी, इन चीजों में इनकी अकल बड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है, लेकिन जो जो इनको जहन्नुम से बचाने वाली बातें थी वहां पर इनकी अकल नहीं काम कर रही थी, यहां पर इनकी अकल बड़ी काम कर रही है। कैसी फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी मामला होता है जब रूहानी बीमारियों का इलाज नहीं किया जा रहा होता और शैतान के हाथों में इंसान खेलना शुरू हो जाता है ना, अब उसकी दुनियावी मामलात में खूब अकल चल रही होती है लेकिन आखिरत के मामलात में उसकी अकल जो है ना वो उसके ऊपर पट्टी बन जाती है, जैसे इनके ऊपर भी ऐसे ही मामला हो गया था। तो फरमाते हैं कि ये राय देने वाला उनका सबसे बड़ा यहूद बड़ा भाई यहूदा था, जिसके बजाय ऐसे ही लगता है कि उसी के नाम के ऊपर फिर यहूदी कहलाए ये लोग, ठीक है, उसका नाम यहूदा था इनका बड़े भाई का। और बाज रिवायात में है कि रोबेल सबसे बड़ा था, उसी ने ये राय दी थी। और ये वो शख्स है जिसका जिक्र आगे आता है कि जब मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन को रोक लिया गया तो उसने कहा कि मैं जाकर बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं वापस कनान नहीं जाता, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ जो है ना वो नेकी थी, इसने जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश करी लेकिन सफिशेंट नेकी नहीं थी कि रास्ते में जो है वो रुकावट बन करके इनको उनके इस प्लान को नाकाम बना देता, इतनी जो है ना वो इसके अंदर नहीं थी। तो इस आयत में लफ्ज गयाबतल जुब फरमाया है, गयाबा हर उस चीज को कहते हैं जो किसी चीज को छुपा दे और गायब कर दे, इसलिए कब्र को भी गयाबा कहा जाता है। और जुब ऐसे कुएं को कहते हैं कि जिसकी मन बनी हुई ना हो, यानी जिसकी शायद मन जो है वो आपके क्या कहते हैं बाउंड्रीज वगैरह ना बनी हुई हो, ऐसे कच्चे कुएं को जो है वो जुब कहते हैं। तो जाहिर है वो कोई आबादी के अंदर तो था नहीं, हो तो दूर कहाँ किसी ने ऐसी खोद दिया होगा तो रास्ते में पानी वानी इस्तेमाल करने के लिए, तो उसकी बाकायदा कोई ऐसी मेंटेनेंस वगैरह नहीं हुई हुई थी उस कुएं की। यल्तकत हु बादु सय्यारा, लफ्ज इल्तिकात नुक्ता से बना है, यल्तकत हु इल्तिकात से निकला और इल्तिकात जो है वो नुक्ता, तो नुक्ता उस गिरी पड़ी चीज को कहते हैं जो किसी को बगैर तलब मिल जाए, बस पड़ी हुई थी रास्ते में गुजर रहा था उसको मिल गई वो चीज, गैर जानदार चीज हो तो उसको लुक्ता और जानदार को फुकहा की इस्तेलाह में लकीत कहा जाता है। इंसान को लकीत उसी वक्त कहा जाएगा जबकि वो बच्चा हो आकिल बालिग ना हो, ठीक है, रास्ते में कोई छोटा बच्चा पड़ा हुआ हो जो कि अभी बालिग नहीं हुआ है, आकिल नहीं हुआ है, तो रास्ते में पड़ा हुआ किसी को बच्चा जो है मिल जाए तो उसको लकीत कहा जाएगा, ठीक है। और कोई गैर जानदार चीज हो, जैसे किसी की अंगूठी मिल गई, किसी का हार मिल गया, किसी को जो है वो नोट मिल गया, किसी का वॉलेट मिल गया, सेलफोन मिल गया, तो उसको लुक्ता कहा जाएगा। कुर्तुबी ने इसी लफ्ज से इस्तेदाल किया है कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था उस वक्त वो नाबालिग बच्चे थे। नीज याकूब अलैहिस्सलाम का ये फरमाना भी उनके बच्चा होने की तरफ इशारा है कि मुझे खौफ है कि उसको भेड़िया खा जाए, क्योंकि भेड़िया का खा जाना बच्चों ही के मामले में मुतसव्वर है, ठीक है। शेर तो है, वो तो बड़े आदमी को भी खा सकता है, लेकिन भेड़िया इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी बड़े आदमी को आराम से कत्ल कर दे और खा जाए, तो बच्चे के मामले में मुतसव्वर ऐसा, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं। इब्ने जरीर इब्नुल मुंजर इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है कि उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी, ठीक है, वही इब्ने जरीर कुतबी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह नुक्ता और लकीत के शरी अहकाम की तफसील दी है जिसकी यहाँ गुंजाइश नहीं। फिका की किताबों के अंदर ये अहकाम नुक्ता के ऊपर बाकायदा बाब मौजूद होते हैं कि गिरी पड़ी चीज को देखा जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने उसकी सारी तफसील नहीं लिखी है, अलबत्ता उसके मुताबिक उसूली बात यह समझ लेना चाहिए कि इस्लामी निज़ाम में आम लोगों के जान माल की हिफाजत, रास्तों और सड़कों की सफाई वगैरह को सिर्फ हुकूमत के महकमों की जिम्मेदारी नहीं बनाया बल्कि हर शख्स को उसका मुकल्लफ बनाया है। रास्तों और सड़कों में खड़े होकर या अपना कोई सामान डालकर चलने वालों के लिए तंगी पैदा करने पर हदीस में सख्त वईद आई है, ठीक है। यानी कचरा कर देना, जिसको के अमेरिका वगैरह के अंदर लिखा होता है प्लीज डू नॉट लिटर, या लिटरिंग के ऊपर जो है ना वो इतने डॉलर फाइन होगा, तो लिटरिंग कहते हैं इसी तरह के, हम जिस तरह करते हैं ना, हमने पानी की बोतल पी उधर ही फेंक दी, ठीक है ना, और जो है वो चिप्स खाया उधर ही फेंक दिया, उसका रैपर बिस्किट खाया उसका रैपर उधर ही फेंक दिया, कोई और चीज ऐसा कचरा हुआ हो बस जहाँ जहाँ चल रहे थे वहीं पे गिराते चले गए। हत्ता के हज के बाद आपको पता है कि सऊदी हुकूमत जो है वो 2 महीने तक जो है ना वो पूरे मशायर को जो है वो बंद करके रखती है ताकि जो ईमान वालों की फैलाई हुई गंदगी है, ईमान वालों की फैलाई हुई है ना, मकबूल हज करने वालों की फैलाई हुई गंदगी जो है ना वो 2 महीने तक साफ करते रहे, ठीक है। तो हदीस में इसके ऊपर सख्त वईद आई, ठीक है भाई। तो भाई मौलवी हजरात को तो कम से कम इसका एहतमाम करना चाहिए ना, जो खुद भी ना करें और अपनी औलादों को भी सिखाएं समझाएं, ठीक है ना। औलादों की इन बातों के ऊपर नजर रखनी होती है, और ये उसी वक्त नजर रख सकते हैं जब अपनी हरकत के ऊपर नजर हो कि मैं ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा कहीं, ठीक है, तो फिर औलादों को भी समझाने की तौफीक मिलेगी। तो औलादों का कम से कम ना यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, 42 इस वक्त मौजूद हैं, बाद में अगर कोई रिकॉर्डिंग सुनता है तो बराए मेहरबानी इतना तो कम से कम हम जो है ना वो अच्छे अखलाक के अंदर पैदा करें कि कचरा करना जो है ना ये अब हम खत्म करें, ठीक है। दूसरा कोई साफ करेगा, बाद में लोग जो है वो इंतजामिया कमेटी आकर के साफ करेगी, या जो है वो चौकीदार साफ करेगा। भाई डस्टबिन जहां पर भी है तलाश कर लें, अगर नहीं है तो फिर अपनी जेब में डाल लें, ठीक है ना, जेब में डाल लें उसको, और कहीं ना कहीं जाकर के डस्टबिन मिल जाएगा, वहां पे जाकर के उसको फेंक दें, ठीक है। तो जहन में बात हो तो फिर हम कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम होता नहीं है। तो फरमाया कि जो शख्स मुसलमानों का रास्ता तंग कर दे उसका जिहाद मकबूल नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज पड़ी है कि जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंच जाने का खतरा है, जैसे कांटे या कांच के टुकड़े या पत्थर वगैरह, उनको रास्ते से हटाना सिर्फ म्यूनिसिपल बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं बनाया बल्कि हर मुसलमान को तरगीबी अंदाज में इसका जिम्मेदार बनाया है, और ऐसा करने वालों के लिए बड़े अजर व सवाब का वादा किया गया है ना, कि रास्ते के अंदर जो रुकावट पड़ी हुई थी उसको हटा लेना, उससे जो है वो मुसलमान के गुनाह बख्शे जाते हैं और ये नेकी है, ठीक है। तो अब आप हमारे मुल्कों का हाल देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे मुसलमान ज्यादा जमा हो गए वहां पे ज्यादा गंदगी होती है, और नाउज बिल्ला जहाँ पे काफिर ज्यादा होते हैं वहां पे रूहानी गंदगी बेशक सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जाहिरी और मादी गंदगी जो है वहां पर आपको कम नजर आएगी, ठीक है। ऐसा हर जगह नहीं होता, इंडिया के अंदर जो हिंदू हैं उनकी हमने जो सुना कि मतलब जब हमारे अब्बा हुजूर अक्सर सफर करने के लिए चले जाते थे वो, और बाकी लोग भी आके भी, क्योंकि पाकिस्तान में गंदगी जो है ना वो तो कम है, और वहां पर जो गंदगी होती है उसका तो कोई हिसाब नहीं, ठीक है। तो वो तो खैर यानी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दीन की गंदगी गलाजत वाली चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में कम से कम कुछ सफाई तो है ना, कुछ सफाई तो हमारे दीन की ऐसी है कि जो कि हम ना चाहते हुए भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन उनके तो दीन के अंदर ही अजीब गरीब किस्म की गंद और गलाजत है, तो इस वजह से उनके यहाँ ज्यादा गलाजत नजर आती है। अभी जो है ना वो G20 हुआ ना, आप में से बहुत सारे उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, तो G20 हुआ तो फिर उसके बाद वीडियोज लोगों ने बना बना करके कि अभी हम जो है ना, हमें तो उन्होंने छुपा दिया था, है ना, ये बोर्ड लगा लगा करके और जो है ना वो कपड़े की वो तान तान करके ना, कि ताकि जो बाहर वाले जो आ रहे हैं ना बड़े बड़े लीडर्स, तो उनको नजर ना आए कि हमारी कितनी गलाजत में हम रह रहे हैं, ठीक है ना। वो छुपा छुपा के, वो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था एक जमाने में, लेकिन फिर भी उतनी गंदगी नहीं होती थी। वो प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं भी, वो पूरे सड़कें साफ हो रही हैं और पेंट हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है ना, और प्रेसिडेंट साहब गए फिर सारा का सारा वैसे ही, ठीक है। तो ये तमाशे जो है ना वो अच्छा गोरा गोरा साहब जो है ना उन्हें अच्छा बना करके किया, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, कि बस ऐसी सफाई बस कर दिया करो। तो घरों के बाहर फिर सारा कचरा पड़ा हुआ होता है, और अक्सर तो घरों के अंदर भी कचरा पड़ा हुआ होता है, लेकिन बाहर तो कम से कम होता ही है। इसी उसूल पर किसी शख्स का गुमशुदा माल किसी को मिल जाए तो उसको शरई जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही नहीं कि उसको चुराए नहीं, बल्कि ये भी उसके जिम्मे है कि उसको हिफाजत से उठा कर रखे और ऐलान करके मालिक की तलाश करे, वो मिल जाए और अलामात वगैरह बनाने बयान करने से ये इत्मीनान हो जाए कि ये माल उसी का है तो उसको दे दे, और ऐलान और तलाश के बावजूद मालिक के पता ना चले और माल की हैसियत के मुताबिक ये अंदाजा हो जाए कि अब मालिक उसको तलाश ना करेगा, उस वक्त अगर खुद गरीब मुफलिस है तो अपने सर्फ में ले आए वरना मसाकीन पर सदका कर दे, ठीक है। अगर खुद ही मिस्कीन में शुमार होता है उसका तो वो अपने मसरफ में भी उसको लेकर के आ सकता है, ठीक है। यानी ऐलान और तलाश के बाद अगर कोई ना मिले तो उसके बाद, और बहर सूरत ये मालिक की तरफ से सदका करार दिया जाएगा, उसका सवाब उसको मिलेगा, गोया आसमानी बैतुल माल में उसके नाम पर जमा कर दिया गया, ठीक है। तो ये है नुकते के बहुत ही मुख्तसर अहकाम, ये हैं खिदमत आमा और इमदाद बाहिमी की वो उसूल जिनकी जिम्मेदारी इस्लामी मुआशरे के हर फर्द पर आयद की गई है। काश मुसलमान अपने दीन को समझें और उस पर अमल करने लगें तो दुनिया की आंखें खुल जाएं कि हुकूमत के बड़े बड़े मुहिक में करोड़ों रुपये के खर्च से जो काम अंजाम नहीं दे सकते वो इस आसानी के साथ किस शान से पूरा हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके आगे मजीद तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात जो है वो भी ये आज जरूरी समझता है बयान करना, कि अमेरिका यूरोप के अंदर जो आपको सफाई नजर आती है ना, तो इसकी भी वजह होती है। ये ऐसे नहीं है कि बस वो दिल के बड़े नेक हो गए हैं और बड़े जो है ना वो सफाई पसंद हो गए हैं तो इस वजह से उनकी सड़कें साफ नजर आती हैं, ठीक है ना। इसकी दो रीजन होती हैं क्योंकि क्यों अमेरिका की और यूरोप की सड़कें आपको साफ नजर आती हैं। एक रीजन तो ये होती है कि उनका जो तालीमी निजाम है ना उसके अंदर ये घोल के पिला दिया जाता है, बहुत ज्यादा यानी सिखाया जा रहा होता है, ठीक है, कि लिटरिंग ना किया जाए। लेकिन उनका तालीमी निजाम भी हर जगह एक जैसा नहीं होता, ठीक है। यूरोप के अंदर भी जो है वो कुछ जो कंट्रीज हैं उनमें तो यानी 100% उनका तालीमी निजाम है, जैसे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और मे बी फ्रांस शायद, और यानी इस तरह के, ठीक है। यूके में इतना बेहतरीन तालीमी निज़ाम नहीं है, अगरचे कि पूरी दुनिया में हम उसी का तालीमी निज़ाम पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितना अच्छा तालीमी निज़ाम यूके का और हर हर मुल्क का नहीं होता वेस्टर्न यूरोप के अंदर, लेकिन तालीमी निज़ाम का इसमें बहुत बड़ा दखल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनका जो है ना वो लीगल सिस्टम ऐसा होता है कि अगर कोई करेगा ना गंदगी, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान से गया हुआ, पाकिस्तान से जो वहां पे गया हुआ होता है, इंडिया से जो गया हुआ होता है, वो तो उनके तालीमी निजाम से नहीं पल करके बड़ा हुआ होता, वो क्यों वहां पे गंदगी नहीं कर रहा होता, इसलिए कि उसको लीगल सिस्टम का खौफ होता है, ठीक है ना। उसी तरह से वहां के जो बुरे तालीमी निजाम के पढ़े हुए होते हैं, जैसे अमरीका के अंदर ये जो काले लोग होते हैं मेजोरिटी कालों की जो होती है ना, वो अच्छे स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़े हुए होते, उन स्कूलों के अंदर ऐसी तरबियत वगैरह नहीं करी गई होती है सफाई सुथराई वाली, ठीक है ना। उनके नेबरहुड जो होते हैं वो बल्कि इंतहाई यानी जो कालों के नेबरहुड्स है ना, ज्यादातर बड़े शहरों के अंदर लॉस एंजलिस हो गया, शिकागो हो गया और न्यूयॉर्क हो गया, वहां पे गंदी गंद होती है, बहुत गंद होती है, ठीक है। तो उनके तालीमी निदाम जहां पर नहीं है वहां उनके मुल्कों के अंदर भी गंदगी होती है, ठीक है, लेकिन जहां पर हैं तो वहां पे तालीमी निदाम से पढ़ के निकलने वाले जो है वो इन चीजों का ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी कर दी गई होती है। और दूसरी चीज लीगल सिस्टम होता है, ठीक है। जहां इनका लीगल सिस्टम बंद हो जाता है ना, जैसे लाइट चली गई आज से 25-30 साल पहले, न्यूयॉर्क के अंदर भी ऐसे वाकयात हुए, फिर कैलिफोर्निया में भी होते ही रहते हैं, लाइट चली गई थी, तो उसके बाद फिर इनकी सारी हकीकत जो है ना वो खुल के सामने आ जाती है और खूब जो है वो फिर उसके बाद तमाशे होते हैं। अब जो है वो इस वक्त अमेरिका बहादुर जो है ना, उसके बड़े बड़े शहर जो है ना वो इस वक्त इसी नहज पे पहुंचे हुए हैं कि उनका लीगल सिस्टम जो है ना वो अच्छा खासा ब्रेक हो रहा है। तो अब वहां पर जो अच्छे नेबरहुड है ना वहां पर भी फिर गंदगी जो है ना वो सड़कों के ऊपर नजर आनी शुरू हो गई है अच्छी खासी, ठीक है। और वहां के अपने लोग हैं और परेशान है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमारे लिए उनकी सफाई भी कोई वो नहीं है कि हम उनको देख करके सफाई करना शुरू हो जाए और ना हम उनको देख करके गंदगी करना शुरू हो जाए। भाई हमारे पास तो परवरदिगार आलम का कलाम मौजूद है, हमारे पास तो महबूब खुदा की सीरत सुन्नत मौजूद है, ठीक है ना। हमें तो इसको देख करके, हमने जो उनकी बुराइयां आपके सामने या अच्छाइयां बयान करी हैं, बिल्कुल भी नहीं कि या तो हम उनको देख करके अच्छाइयां करें या उनकी बुराइयां देख करके आप खुश होना शुरू हो जाए, वो अच्छा वो हमारे दुश्मन है तो अच्छा वो बुरे हो गए, ठीक है। डाके भी हो रहे हैं आजकल बड़े बड़े स्टोर में, डाके भी हो रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है, तो बेड़ा गरक उनका शुरू हो चुका है। शुरू तो खैर बहुत पहले हो गया था लेकिन अब जरा खुल करके सामने आना शुरू हो गया, ठीक है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला जो है ना वो इस तरीके से उलटते पलटते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा दें, तौफा की तौफीक अता फरमा दें, हैं चाहे ना चाहे फिर भी अता फरमा दें हमें, ठीक है। तो फिर शायद हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद इस उम्मीद उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो कहने में क्या हर्ज है, खुश रहने में क्या बुराई है, ठीक है। लेकिन काश के हम अपनी तौबा कर लें ना, तो हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है, ठीक है ना। हमें यानी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अगर तौबा करेंगे ना उनको हमारे पास भाग के आने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि वो आ रहे हैं मुसलमानों के पास, जैसे तैसे भी आ रहे हैं लेकिन मुसलमानों से सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो भाई ये एकदम घर में मौजूद है, हमारे पास तो नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।